assim, nada, esquece ela. यार क्लास की खुशकिस्मत है कि हाफिज अली इसका साहब हमारे पास है। ये किसी वक्त अहमदियों के बहुत सख्त मुखालिफ होते
तो मेहमान
और एक दफा इन्होंने बताया था कि इन्हें हाथ था ना बड़ा मिर्जा इन्होंने कुटे अपना इनका जाति मदरसा, जाति मदरसा है काफी बड़ा, अब तो था में आ गया, पहले है में था और खासे बासर जिम्मेदार आदमी, लेकिन वो जो खुदा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा ना कि मैंने तुमसे तुम्हारे नफ्स और तुम्हारे माल खरीद लिए, उसके बदले तुम्हें जन्नत दी। जो आजमाइश खैर और शर की दोनों है, इसमें मैं अल्लाह ताला के फजल से कोई उतर सकता हाफिज साहब अरबी जुबान के माशाल्लाह बड़े माहिरों में से हैं, हमारे बाद मुरब्बियान भी इनसे सीखते हैं। अब अल्लाह ताला के फजल करम पर हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में है अल्लाह ताला। इनको मैं इसलिए नहीं पहचानता कि पहले जब आते थे तो दाढ़ी यहाँ तक थी, अब छोड़ दी। आज क्लास तो मुख्तसर है, दोस्त भी मुख्तसर ही है, लेकिन मुझे वो शेर साहब ने कहा था कि जहाद के मौजू पर कुछ मुख्तसर बयान
कर।
सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि हम दीन की जिस भी महफिल में बैठते हैं अपने मौलवी को अपने आलिम को सुनते हैं और उसको सच मानने के आदी होते हैं। मुमकिन है मैं जो कुछ कहूँ आप समझें यही ठीक है, इसलिए कि मैं आप में सुन। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है, या अय्युहल लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फुसुकुम, ए ईमान वालों तुम पर तुम्हारे दीन की जिम्मेदारी है। इंफरादी तौर पर अल्लाह ताला ने हर फर्द को इस बात का जिम्मेदार करार दिया और इस जिम्मेदारी को पूरा करने का हुक्म दिया कि वो ये जान ले कि वो हक पे है या नहीं, वो सिरात मुस्तकीम पर है या नहीं। क्योंकि कुरान करीम ही हमें ये बात बता चुका है इससे पहले कि जब दीन मुख्तलिफ ग्रोहों और फिरकों में होता है, कुल्लु हिज्बिन बिमा लदैहिम फारिहून, हर ग्रोह हर फिरका इस बात पर खुश और मुतमईन होता है कि हम ठीक हैं। लिहाजा अल्लाह ताला का ये कहना, ये फरमाना कुरान करीम में कि तुम अपने दीन के लिए जिम्मेदार हो हर शख्स जाती तौर पर, साथ ही ये भी देना कि जो गलत है या सही है सब अपने आप को ठीक ही समझते हैं, लिहाजा उस जिम्मेदारी से समझते हैं कि हम ठीक हैं, दूसरा ठीक नहीं है। लेकिन कुरान करीम में जो अगले अल्फाज हैं इसी आयत के, वो ये है कि ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ तदऊन, अगर तुम हदायत पर हो तो तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। अब बज़ाहिर तो कुरान करीम हमें बता भी चुका और ज़ाहिरी तौर पर हमें ये नज़र भी आता है कि हर शख्स अपने आप को हदायत पर ही समझता है, अपनी जाती कमजोरियाँ खिलाता चीज़ें, मसलन अहमदी होगा तो वो समझेगा कि हम हैं ठीक ही, ठीक है मैं नमाजें सुस्त है गया, मैं बाकी चीज़ें सुस्त है गया, चंदेन सुस्त है गया, लेकिन वैसे ठीक हूँ, जमात ही ठीक। आप अहले तशरीह में चले जाएं तो वो शायद हमसे भी ज्यादा मजबूत तरीके से अपने को ठीक समझते। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया कि लौ शाअ अल्लाहु जअलकुम उम्मतन वाहिदा, अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक जमात बना लेता, अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं था, ولكن لیبلکم فیما آتا آپ کو، لیکن اللہ نے اس میں ایک آزمائش رکھی کہ کون آتا ہے اپنے رب کی طرف، کون نہیں آتا، کون توجہ کرتا ہے. تو لا الہ الا اللہ تم واضح طور پر یہ نشاندہی کرتا ہے کہ اگر آپ کو حق کا پتہ ہے تو آپ کو گمراہ نہیں کرتا. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو حق پر سمجھنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں چاروں طرف نظر آتا ہے کہ سب یہی سمجھ لیں، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ سمجھنے کی کوئی حیثیت نہیں. کسی ایم ڈی کا ایم ڈی گھر میں پیدا ہو جانا اور سمجھنا کہ ہم حق میں ہیں، اسی طرح یہ جس طرح کوئی بھی کہیں پیدا ہو کے سمجھے کہ ہم حق میں. پھر ظاہر ہے ایک جو بندی ہوگا تو وہ اپنے عالم کے پاس جائے گا، وہ جو بھی سوال کرے گا وہ جواب دے گا، وہ سمجھے گا یہ عالم ہے، ہم مطمئن ہیں، جواب سے مطمئن ہوگا. ایون قرآن کریم کی کوئی آیت بھی ہوگی تو لے جا کے پھر اسی کے پاس رکھ دے گا، وہ پھر جو سمجھا دے گا وہ سمجھے گا ہاں یہ ٹھیک ہے. تو کیسے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے؟ مثلا آپ، میں جہاد کے موضوع پر کوئی بات کروں یا جس میں بھی موضوع بات کروں، ممکن ہے یہ ہمارا نقطۂ نظر ہو، یہ ٹھیک ہونا یہ غلط ہونا بالکل ایک علیحدہ معاملہ ہے، ہر ایک کا نقطۂ نظر ہے، ہمارا بھی ایک. تو سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹھیک پتہ ہے تو آپ کو غلط کا پتہ لگ جائے گا، ٹھیک نہیں پتہ تو غلط کا پتہ لگ ہی نہیں سکتا. مثلا اگر آپ کو پتہ ہے کہ دو جمع دو چار ہوتا ہے تو آپ کو کوئی کہے پانچ ہوتا ہے، کوئی کہے سات ہوتا ہے، کوئی کہے نو ہوتا ہے، تو آپ نہیں گمراہ ہوں گے اس لیے کہ آپ کو پتہ چار ہی ہوتا ہے. میں آپ کو کوئی پیپر دیتا ہوں سالو کرنے کے لیے یا چیک کرنے کے لیے دیتا ہوں، تو آپ کہیں گے یہ سوال غلط ہے، یہ سوال غلط ہے، یہ ٹھیک. کب کہیں گے؟ جب آپ کو پتا ہوگا ٹھیک کیا ہے، تبھی آپ کسی چیز کو ٹھیک قرار دے سکتے ہیں، تبھی آپ کسی چیز کو غلط قرار دے سکتے ہیں، اگر آپ کے علم میں ہو کہ ٹھیک کیا ہے. تو دین میں ٹھیک کیا چیز ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو ٹھیک نہیں پتا تو آپ، ہر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، تو آپ کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ آپ کسی دوسرے کو غلط سمجھیں، کیونکہ آپ کو تو ٹھیک ہی نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ بات سمجھائی ہے، یہ دین اللہ کا نازل کردہ کلام ہے. انا انزلنا علیک الکتاب بالحق، اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے، خدا کا کلام حق ہے. جب اللہ کا کلام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بل هو الحق من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے ہوگا وہ حق ہوگا، وہ غلط نہیں ہو سکتا. جب دین کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے بتائی، دو قسم کے دین بتائے نا، ایک تو اللہ کا دین ہے، باقی غیر اللہ کے دین ہے. تو ہمیں اللہ کا دین پتہ ہو تو ہمیں غیر اللہ کا دین سمجھ آ جائے گا، ہمیں اللہ کا دین ہی نہیں پتہ تو غیر اللہ کا دین کیسے پتہ لگے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ جو اللہ کا دین ہے وہ اسلام، باقی دین اللہ کے نہیں ہے، خواب کچھ بھی. اب جسٹ آپ نے ڈکشنری کھول کر دیکھنا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اسلام اگر ڈکشنری کھولیں گے تو اسلام کا مطلب اللہ کے نازل کردہ کلام کی پناہ، ان اکارڈنگ ٹو دی ورڈز آف گاڈ. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق بات ہے وہ ٹھیک ہے، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق نہیں ہے وہ غلط ہے. تو ہمیں ٹھیک طور پتہ ہونا چاہیے نا، اللہ کا دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا. جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تب بھی ہم یہی بات کرتے ہیں. عبد کہتے ہیں غلام کو، معبود کہتے ہیں جس کی غلامی کرنی ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا معبود سوائے اللہ کے اور کوئی. اللہ کی غلامی کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ کی خدمت کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں اسے؟ نہیں. واحد غلامی جو رہتی ہے اس کے حکموں کی اطاعت رہتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی غلامی نہیں ہوتی. تو جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یہی اللہ کا دین ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نازل ہیں، وہ احکامات جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیے ہیں وہ درست ہے، وہ اسلام ہے. وہ چیز جو غیر اللہ کی طرف سے ہے، ہر وہ چیز جو خدا تعالیٰ کے کلام کے مخالف یا مقابل ہے وہ غیر اللہ کی. قرآن کریم اسے طاغوت کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمام انبیاء کو یہ دو حکمیں دے کے مبعوث کیا تھا، انے عبد اللہ باشتانے بتا ہو، اللہ کے عبد بنو، اللہ کے حکموں کی غلامی میں آؤ اور تاغوت کی بات سے بچو. تو ہمیں ایک تو یہ بات پتہ لگی کہ اللہ کا دین یہ ہے، باقی دین غیر اللہ کے ہیں. اور اگر آپ اسی کلام اسی آیت کو پوری پڑھ کر چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین اسلام ہے. ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، میں کہ جو اختلاف کیے ہیں لوگوں نے دین میں باوجود اس کے کہ کتاب اور حق موجود ہوتا ہے، کبھی بھی اختلاف اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ خدا کا کلام یا اسلام موجود نہیں تھا تو اختلاف ہو گیا، اسلام موجود ہو اختلاف ہو جاتا ہے. فرمایا بغیاً بینہم، ان سب نے آپس میں بغا کیا ہوتا ہے خدا کے کلام سے، اس سے بغاوت کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. اگر سارے خدا کے کلام کے مطابق ہو تو اختلاف کیسے پیدا ہوگا؟ اور اس کو مزید آگے جا کے وضاحت فرما دی اللہ تعالیٰ نے، مَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، گویا انہوں نے کیا کیا ہے، اللہ کی آیت کا کفر کیا ہے. مثلا میں اللہ تعالیٰ میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ نعوذ باللہ من ذلک، غیر من غیر اللہ کو پکارنا ہے، بلکہ اس سے یہ وسیلہ بنتا ہے، عقیدہ ہے نا میرا، میں پکاروں گا بھی، جب عقیدہ ہے تو پکاروں گا. قرآن کریم کو جب میں دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر فرماتا ہے اللہ ما یادون من دون هو الباطل، اللہ کے علاوہ اگر تم نے کسی کو پکارا تو باطل. پکارنے کی اجازت پورے کلام میں کہیں موجود نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قل انما ادعو ربی، تو ان کو بتا دے کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا، ولا اشرک بہ احدا. تو مختصراً یہ کہ خدا تعالیٰ کا کلام اسلام ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ حق ہے. میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، میرے آبا اجداد بھی غلط ہو سکتے ہیں، سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، خدا کا کلام غلط ہو سکتا ہے کسی بھی صورت. جب مجھے یہ پتہ لگ جائے گا تو میرے لیے راستہ بالکل دو اور دو چار ہو جاتا ہے. مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ وہ لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَیُؤْمِن بِآیَاتِنَا فَهُوَ مُسْلِمٌ، مسلمان کا لفظی مطلب ہوتا ہے مال دینے والا، اطاعت کرنے والا، کس چیز کی؟ اللہ کی نازل کردہ آیت. مَیُؤْمِن بِآیَاتِ، یعنی اسلام خدا کا کلام ہے، مسلمان اس کو ماننے والا، قول اور فعل سے. ایمان قول اور فعل دونوں سے ہوتا ہے. مثلا ماں آپ کو کہے کہ گلاس پانی لا دو تو تجھے کو بالکل ماں جی، تو اس کا مطلب نہیں ہوگا کہ آپ نے اطاعت کی. جب آپ اپنے فعل سے اس چیز کو پورا کریں گے تب مطلب ہوگا کہ آپ نے اطاعت کر. اسی طریقے سے آج جو موضوع ہے وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سب سے زیادہ اس موضوع کو دنیا ایکسپلوئٹ کرتی ہے اور ہم خود وہ موضوع کے ہاتھ میں دیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر اگر آپ ان کے انٹرویو یا تقریریں سنیں تو کوئی کہتا ہے جی 250 مرتبہ قرآن کریم میں جہاد کا حکم ہے، کوئی کہتا ہے 350 مرتبہ قرآن کریم میں جہاد کا حکم ہے. ہم نافرمان نہیں کرتے. تو ہمارے علم میں دو باتیں ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم میں جہاد کا لفظ صرف 41 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور لڑائی کے حکم کے طور پر ایک مرتبہ بھی نہیں. اللہ سے زیادہ کوئی جہاد کا حکم جانتا ہے؟ پورا قرآن کریم میں نے آیتیں لکھ کے لازم رکھی، ان میں سے ایک بھی آیت نہیں جس میں خدا تعالیٰ نے لڑنے کا حکم دیا ہو اور لفظ جہاد استعمال کیا. ایک جگہ اموالکم انفسکم، نفس کا معاملہ ہے یا مال کا معاملہ ہے؟ جہاں جہاں لڑنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے لفظ قتال استعمال. فَقَاتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَأَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. اس چیز کی اہمیت دو لحاظ سے آپ کے علم میں ہونی چاہیے. एक तो ये कि दुनिया के जितने भी मजाहब हैं, जितने भी मजाहब हैं, कुरान करीम के मुताबिक हर मजहब इस्लामी था, क्योंकि अल्लाह का नाज़िल करदा कलाम ही होता है दीन, और तो कोई दीन होता नहीं। लेकिन इस्लाम अपनी कामिल शक्ल में हज़रत ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल। एक तो इसको दावा समझ लें, क्योंकि दलील जब तक ना हो दावा ही रहता है। दूसरी इस पर दलील मान लें, क्योंकि इससे पहले एक दफ़ा टाउनशिप में डॉक्टर खुर्रम साहब के घर थे हम, तो ये जो हाफिज़ सईद साहब थे इनके गालबन दामाद थे, वो तशरीफ़ लाए हुए थे। उन्होंने जो सवाल किया था वो बहरहाल डेयरियों वाले था, वो इससे चूंकि थोड़ा बहुत रिलेटेड है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये तो सारे मतलब ठीक ने अपनी अपनी जगह, कहना मतलब ये है कि सारे का काम चलता है, कोई बंदा मोबाइल नोकिया का मोबाइल रख लेता है, तो कोई सैमसंग का रख लेता है, तो कोई दूसरा मोबाइल रखता है, कहना नोकिया वाले का भी काम चलन डे होंगे, सैमसंग वाले का भी चलन डे, फिलिप्स वाले का भी चलन डे होंगे, कहते सबके चलते हैं। लेकिन क्वालिटी अपने आप को रिकग्नाइज कराती है, उसका सवाल था हाफिज़ सईद साहब के दामाद का, कि क्वालिटी अपने आप को रिकग्नाइज कराती है। अच्छा नोकिया अगर क्वालिटी है ना, तो किसी को मैं चाइना का मोबाइल भले हो कहा, लेकिन वो ये कहेगा कि नोकिया का अच्छा है लेकिन महंगा है, ये नहीं कहेगा कि नोकिया का नहीं चाइना का अच्छा है। उसने कहा अगर इस्लाम क्वालिटी होती ना, तो 1450 साल में रिकग्नाइजेशन ने अपने आपको नहीं कराया, नौज बना। तो कहने यदि पिछले 1450 साल भी नहीं रिकग्नाइज करे, वो अगले 1450 साल भी नहीं करा सकते। तो दूसरा उसने बात ये कही थी, दूसरी वो बात हाफिज साहब के जमाने की, उन्होंने कही थी कि दीन जब तक दीन और फसाद है, हमेशा फसाद दीन के नाम पर जितने आएगा फसाद शुरू। कलीसा के दौर की मिसाल में भी उन्होंने कहा था कि पहले भी जिस वक्त तक ईसाइयों में ये आता रहा, जब क्रिश्चियनिटी आई, उसके बाद क्रिश्चियनिटी ने जब अपनी रूट्स पकड़ी, हुकूमतें आईं, तो बड़ा फसाद और फून हुआ। जिस वक्त उन्होंने मजहब नू चुक के सुटिया कि मौलवियों का काम में लड़ी फिरन, आपस अपने आप को अलहदा किया, अकल भी आ गई, तमन भी आ गया। अब ये चीज़ उसने हमारे आगे रख दी कि तो तुझे भी दो चीज़ें छोड़ते हो, ठीक हो, इससे रिलेटेड भी जहाद का मामला था। तो मैंने उनको भी ये कहा, मैंने कहा कि बात ये कि अफसोस सिर्फ ये है कि आपने ना मजहब को पढ़ा है ना तारीख को। इसने मजहब को पढ़ा हो, उसे पता होता है कि इस्लाम की सदाकत है क्या, और उसने जो वाहिद मजहब जिसको अप्रिशिएट किया वो यहूदियत थी। उसने कहा ये मतलब एक मजहब है, इसकी वर्थ है, सारी दुनिया में आप देखें इनकी रूट्स हैं, इनकी यूनिटी है, तो मुसलमान कोई जूती हमारे दूजा भी एक मार देता, पाकिस्तान गिर रहा ऊपर सऊदी अरब उनका साथ दे रहा। तो मैंने उससे कहा कि पहली बात तो ये इस्लाम को एक दफा उठा के देख लो, दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है, आपके इलम में ये बात होनी चाहिए। इस्लाम का हर दावा जब आप तहकीक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये दावा बिल्कुल 100% सच है, और उसके मुकाबले पे आपको दलील नहीं मिल सकेगी। दुनिया में कोई मजहब इस वक्त ऐसी हालत में नहीं है जिसको पेश करके कबूल होने करने की दावत दी जा सके, किसी एक भी मौजू पर, किसी मजहब का आप नाम लेकर कहा दें, उनकी वो अपनी शरीयत को पेश करके दावत नहीं देते, वो मैनिपुलेट करके गलत बातें, हम ईसाइयों की तरफ चले जाए वो निजात और कुफारे के अकीदे को पेश करते हैं, और दोनों अकायद का बाइबल से कोई ताल्लुक ही नहीं, बल्कि एंटी बाइबल रखे अकीदे, लेकिन सारी नहीं उस पर बेस करके उसकी तरफ दावत दे देते, क्या जाए बातें बनाई गई। लेकिन सबसे पहली चीज आपके इलम में ये होनी चाहिए कि दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जो किसी दूसरे मजहब को अपने अंदर दाखिल होने की इजाजत देता हो, है ही नहीं, कोई मजहब ऐसा नहीं, इजाजत ही नहीं देता। किसी, मैंने उनसे भी कहा था, मैंने कहा आप ज़रा पसंद करें यहूदी होना, आप जाके तो कोशिश करें, उनसे कहें कि मैं यहूदी होना चाहता हूँ, आप मुझे दाखिल कर दें, तो वो आपको इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि उनकी शरीयत उनको इजाज़त नहीं देती गैर इसराइली को दाखिल करने की। किसी हिंदू के पास कोई पठान जाके कहे कि मुझे पसंद है हिंदुइज्म, मुझे दाखिल करो, अगर वो करेगा तो अपनी शरीयत जाएगा, क्योंकि उनकी शरीयत किसी गैर भारतीय को दाखिल होने की इजाज़त नहीं देती। जब उनका नबी कलाम भी करता है तो भारतम कह के करता है, यदा यदा है धम से गलरनी बहुत ही भारतम, भारत उसी से पढ़ा। बेशुमार आपको पारसी मिल जाएंगे अपने इर्द गिर्द, आप किसी से कहेंगे आप लोग बड़े अमन पसंद लोग हैं, मैं आप में दाखिल होना चाहता हूँ, वो आपको इजाज़त नहीं देंगे, वो कहेंगे हमें इजाज़त नहीं है गैर पारसी को मैं दाखिल करूँगा। फिर उनमें से किसी की तालीम ऐसी है ही नहीं जो किसी मौजू पर भी पेश की जा सके। जो सब कुरान करीम से पहले जो इमाम किताब महफूज हालत में मौजूद है काफ़ी हद तक, वो तौरात है, जो शरीयत कुरान करीम में अल्लाह ताला मिन कबले किताब मूसा इमाम और रहमत, इस कलाम से पहले मूसा की किताब इमाम और रहमत थी। अब उस किताब को जरा खोलें, उनसे कहो जिहाद के मौजू पर खोलें, जरा किसी मौजू पर खुलवा लें, लेकिन पहले इस मौजू पर जो क्योंकि आज से मुतल्लिक है उसका एक खोल के देखें। तौरात की तालीम है कि जब, पहली बात तो यह है कि कुलियतन बनी इसराइल के लिए, इसराइली से सूद ले ना ले और गैर इसराइली से ले। अब अगर कोई यहूदी होता है और गैर इसराइली है तो इसका मतलब यह है कि वो सारे मिलकर इसराइलियों को फिट देंगे, इसराइलियों ने आपस में एक मतलब सारों को एक दूसरे को फायदा पहुंचाना है, बाहर वालों को नुकसान पहुंचाना। जहाद के मौजू पर उनकी तालीम है कि जब तू उनके शहरों पर हमला कर, उनको रोंद डाल, किसी एक को भी जीता ना छोड़, इनके सब असबाब लूट ले, किसी एक को भी जीता ना छोड़, तू उनसे मुआयदा ना कर, उन पर रहम ना खा, लफ तरस कह तो उन पर तरस ना खा, उनसे मुआयदा ना कर, और जो बचे उनको अपना गुलाम बना ले। वालेकुम सलाम रहमत। ये तालीम तौरात की गैर इसराइलियों के बारे में है कि उन पर हमले करो, और जब हमले करो उनमें से किसी को जीता ना दो, उनके सब असबाब लो। वहां पे कुरान करीम की क्या तालीम है, ये हमारे इल्म में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़े इल्ज़ामों में से ये इल्ज़ाम है। क्योंकि इस्लाम एक तो वो है जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया, जब हम ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो दो ऐलान हम एक वक्त में कहते हैं। एक ने आपको ये कहते हैं कि हम अल्लाह के नाज़िल करदा हुक्मों के गुलाम हैं, और दूसरा ये कि किस इस्लाम को हम कबूल कर रहे हैं, कौन से हुक्मों की गुलामी का ऐलान करते हैं, तो हम कहते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी वो अहकामात जो हज़रत खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाए, हम उन हुक्मों की गुलामी का ऐलान कर रहे हैं। इस इस्लाम में अल्लाह ताला ने दीन की खातर, क्योंकि मुझसे एक दफ़ा एक परवेजी थे जिन्होंने ये सवाल किया था कि जो तशरीही नबी होता है, गैर तशरीही या ताबे नबी होता है, वो कुरान करीम के किसी हुक्म को आर्जी या मुस्तकिल तौर पर मंसूख कर सकता है, अगर कर सकता है तो हवाला दे, अगर नहीं कर सकता तो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कुतिबा अलैकुमुल किताल, अल्लाह ताला ने तुम्हें किताल का हुक्म दिया, और मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि अब दीन के लिए जंग और किताल है हराम, तो फैगुलट दिया कि दीन के लिए जंग और किताल हराम है, वो कहते हैं अल्लाह ताला फरमाता है फर्ज है, मिर्ज़ा साहब कहते हैं हराम है, और हवाला देते हैं। मैं कहता पेज नंबर 74, तो फैगुल लड़िया ये पकड़े। अब इसी बात का जवाब दीन में एक इतनी जालमाना बात है, अब किसी ईसाई से पूछे तीन खुदा तो वो जवाब देगा आपको, जवाब देना किसे कहते हैं, ये बात पहले समझिए। ये नहीं होता कि आप पर कोई इतराज हो तो आप जरूर उसका कोई बना बनाया जवाब दे के रखें, बहस करें। जवाब से मुराद ये है कि जो दुरुस्त बात आपके इल्म में है वो उन तक बता दें, और उनकी दुरुस्त बात हो तो फिर आप मान। कुरान करीम में अल्लाह तआला फरमाता है लयहलका मन हलका बैना व यहया मन हय्या मन, दलील की हलाकत अगर हो तो कबूल करो। दलील हक को कहते हैं, जो दुरुस्त बात है वो दलील है, जो गलत बात है वो मकर है। मैंने बनाया, किसी ने तोड़ दिया, किसी ने नहीं तोड़ सका। अल्लाह के कलाम की हर बात दलील और हुज्जत है, कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगह। अगर एक बात अल्लाह ताला ने फरमाई है वो दुरुस्त है, उसके मुकाबिल या मुखालिफ कोई बात कहता है, खा मैं उसको जो मर्जी समझता हूँ या जो मर्जी मानता हूँ, वो गलत है। ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए। तहकीक, अपने आप को दुरुस्त साबित करना या किसी को गलत साबित करना तहकीक नहीं होती। ये तो वो जिद है जिसकी वजह से हम अलहदा अलहदा बैठे हुए और बैठे रहेंगे जब तक ये हरकत रहेगी। तहकीक का मतलब होता है दुरुस्त बात को समझना बस और मान लेना, ये तहकीक होती है। अगर दलील की हलाकत को मैं नहीं कबूल करूँगा और दलील की ज़िंदगी को मैं नहीं कबूल करूँगा तो वही अबू जहल वाला मामला हो, क्योंकि वहीं से बंदे की जहालत। मतलब आप मुझे कुरान करीम में से दिखा देंगे, देखिए खुदा ताला का वाज़ेह हुक्म है और मुझे पता है कि ये दुरुस्त है, खुदा की बात गलत नहीं हो सकती, और मैं उसको जवाब देना शुरू करूँ, वहाँ से मेरी जहालत का सफ़र शुरू करेगा, अबू जहल तक पहुँचा देगा। तो जो उनका सवाल था वो यही था जो मैंने आपको बताया था अभी, क्योंकि ये तो पुरानी बात होगी मुजाकरे के, जिन साहब के वो अहमदी हैं उन्होंने ये सवाल किया था कि ये बताएं कि नहीं ये बंद कर दें। तो बात ये थी कि खुदा तआला का क्या फरमान है इस बारे में, हज़रत साहब ने क्या फरमाया। कुरान करीम हज़रत साहब जो फरमाएंगे अगर तो वो कुरान करीम के मुताबिक है तो वो कुरान करीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उसकी इतबा का जो ऐलान कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन एक मुसलमान का फर्ज है कि वो खुदा तआला के कलाम के ताबे हो, और उस शख्स के ताबे हरगिज़ ना हो जो अल्लाह ताला के कलाम के मुखालिफ या मुकाबिल कोई भी तालीम देता है, कोई भी तालीम देता है। उसको फिर मतलब वो ठीक है समझ ले यहाँ पे कमजोरी उसने की, गलत बात की, फिर उसको अपना इमाम ना समझे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ला इकराह फिद दीन कहा है, दीन में जबर नहीं है किस सूरत में। दीन के लिए इशारतन भी किसी किस्म की जबर की, किसी किस्म की सख्ती की इजाज़त ही नहीं। आपको किताल की इजाज़त कैसे दीन के लिए मिल सकती। पूरे कुरान करीम से कोई शख्स ऐसी आयत नहीं निकाल के दिखा सकता जिसमें अल्लाह ताला ने दीन के लिए कोई ऐसा हुक्म दिया हो जिससे आप किसी पर जुल्म ज्यादती या हमला या कर सकते। कुरान करीम में ऐसा कोई जब किताल की बात आती है तो कुरान करीम हमेशा उसको जवाबी तौर पर इजाज़त देता है आपको। फ़कातलू फ़ी सबीलिल्लाहि लज़ीना युकातिलूनकुम, 192 नंबर आयत है सूरह बकरा की, कि तुम्हें सिर्फ उनसे किताल की इजाज़त है जो तुमसे किताल करें। ला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, इससे आगे ना बढ़ना। हद दीन में अल्लाह की आयत है, जब आप उससे आगे बढ़ जाते हैं तो आप हद से आगे बढ़ जाते हैं, वो अल्लाह ने आपको इजाज़त नहीं दी थी, फिर आप अपनी मर्जी करते हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है ला ततदु इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता उन लोगों से जो हद से आगे बढ़ जाते हैं। अब ये आप देखिए, मिसाल के तौर पर ये लश्कर तैयबा का ही स्लोगन है, ये उनका झंडा है, जो बाहर मुल्क में बार बार दिखाते हैं। ये इन्होंने अमेरिका का, इसराइल का, इंडिया का झंडा बनाया हुआ, ये तो रॉकेट लॉन्चर, ये सारे कुछ कजाल का जजाउल काफरीन लिखा हुआ, इन काफरों का इलाज यही डॉक्टर इशरार अहमद साहब की क्लिप्स कई एमडीओ के पास होगी जिसमें उन्होंने ये कहा था, और टीवी पे कई दफ़ा आ भी चुका, जिसमें उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि इस्लाम है क्या, या तो हमारे दीन पे आ जाओ हमारे बराबर के हकूक तुम्हें हासिल हो जाएंगे, या छोटे बन के रहोगे, या फिर तलवार तुम्हारे और हमारे दरमियान फैसला करेगी। कहता अजीब, तारीख ने 180 का एंगल पलटा है। कल यही बात कहते थे, आज बुश कह रहा है। एग्जैक्टली यही अल्फाज है ना? इसका मतलब है अब बुश इस्लाम पे हम अट गए, तो यही मतलब हो गया। मनसूख करने का तो जो तमाशा है इन लोगों का, कि आप उठा के देखें, ढाई ढाई तीन तीन सौ आयतें लिख के लिखा हुआ है कि मनसूख है। मैंने उनको यही कहा कि आप हमें कह रहे हैं मनसूख करने का, हम हज़रत मसीह साहब तो फरमाते हैं कि कुरान करीम की हुकूमत को बकुल्ली अपने सर पे कबूल करो, इसका एक शोशा भी क्यामत तक नहीं टल सकता। मेरी तमाम बातें उस जुए के नीचे रखो जो कुरान पेश करता है, कुरान करीम की हुकूमत को कबूल करो। यानी अगर मेरी कोई बात खुदा ताला के कलाम के मुताबिक नहीं तुम पाओ, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि खुदा के कलाम के मुखालिफ बात को मानना शुरू कर दो, ये हो ही नहीं सकता। इस्लाम की तालीम में अब ये जो ये इसी आयत की का एंड है, ये जो कज़ाल का जजाउल काफरीन है ना, इसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक ऐलान फरमाया जो सूरह मायदा में है, 32 नंबर आयत है। मन कतल नफ्सिन बगैर नफ्सिन और फसादन फिल अर्द फकन्नम कतल नास जमीअन, ये दो ऐसी वजूहात हैं जिस पर अल्लाह तुम्हें किसी इंसान के कत्ल की इजाज़त देता है कि कत्ल कर सकते। पहली वजह क्या कि उसने किसी को कत्ल किया हो, सजा के तौर पर उसको कत्ल करो ताकि माशरे में ये जुर्म फैले ना। और दूसरी वजह क्या बताई, उसकी वजह से जमीन पर फितना और फसाद पैदा हो, अमन खत्म हो जाए, ऐसा कोई शख्स हो उसको भी कत्ल करो। क्योंकि जिस शख्स की वजह से मुल्क का अमन खत्म हो रहा है, अमन खत्म होने से तो सब कुछ ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उससे रिलेटेड हर चीज होती है, सारे इंसानों का सुकून वो खत्म कर रहा है, ऐसे को भी कत्ल करो। अगर ये दो वजूहात मौजूद नहीं हो, तुम किसी शख्स को कत्ल करोगे तो फकन्नम कत्ल नास जमीअन, तुमने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। आप मुझे बताएं कि इन दो वजह पर अगर किसी इंसान को कत्ल किया जाए तो कोई दुनिया का बंदा उठ के कह सकता है कि वो गलत कर रहा है? सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई बंदा ये कहे कि ये गलत हो रहा है, कह ही नहीं सकता। पूरा कुरान करीम खोल कर देखें, यही आयत जो ये पेश कर रहे हैं सूरह बकरा की, अगर आप कुरान करीम खोलें 192 नंबर से पढ़नी शुरू कर दें तो यहीं से शुरू होगी। पहले कताल की ये होगी कि उनसे कताल की इजाजत है जो तुमसे ला ताकत जाती ना, अगर इससे बढ़ोगे तो जाति करने लगोगे। इन्ना लाई होते अल्लाह जाति करना। उसके बाद फरमाया कि क्यों अल्लाह ये इजाजत दे रहा है, ताकि फितना खत्म करना जरूरी है। वो लोग जिनसे जो तुम्हारे मुल्क में फितना करते हैं, हमले करते हैं, इस फितने को खत्म करना, अगर नहीं तो फिर या डरते डरते सारा बर्बादी करते रहोगे या अंदर बैठ के वो तुम्हें खराब करते रहेंगे। वहां पे भी अमन की जगह खाना काबा को करार दिया कि ये अमन वाली जगह है, इसमें कताल ना करो। लेकिन अगर वो काफिर हों, इतने बदबخت हों कि वो यहां पे भी तुमसे कताल करने के लिए आ जाए, फिर इनसे पूरा कताल करो। कज़ालिका जज़ाउल काफिर, उसके बाद आइए फिर ऐसे काफिरों का, ये ऐसे काफिरों का जो शरारत से बाज नहीं आते। लेकिन उसके बाद है कि भाई इनते हो, अगर वो बाज आ जाए तो फिर अल्लाह भी रहम करने वाला, तुम रहम फिर खत्म कर दो। इसका मतलब वो हरकत कर रहे हैं, अगर बाद आ जाए तो तुम छोड़ दो। फिर कुरान करीम में मुआहिदों की अहमियत पर जोर दिया, खा वो अंदर हो, अंदर एक स्टेट के अंदर आपके मुआहिदे होते हैं, आपके शहरी मुसलमान भी होंगे, आपके शहरी गैर मुस्लिम भी होंगे, आपका जो इस कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मुआहिदा है उन शहरियों के साथ, वो पाबंद है उसकी पाबंदी करने की, उनको इजाजत नहीं कि वो फितने पैदा करें, आपके मुल्क में बदमनियाँ पैदा करें। अगर आपके अंदर रह के वो फितने शुरू कर देते हैं पैदा करना, इससे हलाकतें पैदा होती हैं, मुल्क का अमन ख़त्म हो जाता है, उनको इजाज़त। या दूसरे ममालिक के साथ भी आपको माहदे हैं, उन मुलायदों के खिलाफ, जिस तरह इंडिया पानी बंद कर रहा है और हरकतें शुरू करते हैं और आपके अंदर दहशतगर्दियाँ शुरू करा दें, माहदों के खिलाफ वर्जी है क्योंकि स्टेट टू स्टेट भी माहदा है, वहाँ पर भी आपको इजाज़त है किताल की, किताल के जरिए इसको रोकें, क्योंकि फितर कतल से भी बुरा है, पूरी स्टेट को डिस्टर्ब करके रखता है। और उन हमला करने वालों के बारे में भी है, वह इन जनाहुल सल में, लेकिन अगर वो सुलह की तरफ झुके फाइनल तो तुम भी झुके। यानी एक तो हमें किसी पर हमला करने की अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी, जो हमले करें, जो फितने करें, बाद में बाद आ जाए तब भी फरमाया के रहम करो, और बाद में झुक जाए सुलह की तरफ तब भी फरमाया कि फैसला ना तुम भी झुक, और यहां तक फरमाया कि अगर अगर वो मकर कर रहे हैं अपने झुकने में तो अल्लाह इसको जानता है, यानी अल्लाह उनको बर्बाद करता है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये सूरह आले इमरान है। पूरे कुरान करीम में कहीं पे भी दीन के लिए हमला करने की इजाजत नहीं। जिस तरह एक मुर्तद के कत्ल की आपने आम सुनना होगा कि मुर्तद को कत्ल कर दो, अब जब कुरान करीम खोल कर देखें, पहली बात तो लाइकरा फिर दीन की ये तशरी हो सकती है कि दीन में जबर नहीं है और फरमाया कि अब एक इंसान ने फैसला करना है कि इस्लाम सही दीन है वो आ जाए, तो उस दीन का तो मुर्तद हो गया ना वो जिससे वो आया है। अगर मुर्तद की सजा कत्ल है तो अगर वो कत्ल कर दे तो हम कैसे कह सकते हैं हमारे मुताबिक भी कत्ल ही है तो उनके मुताबिक भी कत्ल ही है। कुरान करीम में तो अल्लाह ताला ने वजाहत से फरमा दिया कि बार बार भी अगर कोई बंदा मुर्तद होता है तो तुम उस किसी इतनी सी भी उसको किसी किस्म की तकलीफ पहुंचाने के दवादार हो। मैं यब्तदुद मिनकुम दीनी फयुमत वहुवल काफ, अगर कोई इस दीन से मुर्तद हो जाता है और कुफर की हालत में मौत आ जाती है तो औलाए का हबतत अमालम फिलयात दुनिया व फिल, उसकी सजा अल्लाह उसको ये देगा कि दुनिया में जो उसके नेक अमाल होंगे खुदा वो जाएगा। फिर सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है कि बार बार कोई शख्स मजाक करे दीन के साथ, इन्नल लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा ज़ादू कुफ्र लम यकुन इल्ला कुफ्रन वला लियाहदी, खुदा तो कह रहे बार बार कोई मुर्तद हो जाए आए, तुम उसे रोक नहीं सकते कि अब तुम 10 दफा मुर्तद हो चुके अब नहीं आ सकते। अगर मुर्तद की सजा कत्ल हो तो वो दूसरी दफा मुर्तद कैसे होगा, फिर तीसरी दफा कैसे होगा, सुम्मत दादू कुफर अपने कुफर में बढ़ेगा कैसे होगा, और कहीं पे भी नहीं रोक सकता कि तुम उसको कुफर में बढ़ने से रोको, नहीं बढ़ता चला जाए। दीन में अल्लाह तआला फरमाता है फइन्नमा अलैकल बलागो व अलैनल हिसाब, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे जिम्मे खुदा का दीन पहुंचा देना है, इसका हिसाब अल्लाह ने लेना है हमारे जिम्मे। फजक्किर इन्नमा अंता मुजक्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, अल्लाह की नसीहतें पहुंचा दे, तेरा काम नसीहतें पहुंचा देना है, इनके लिए दरोगा नहीं बनाया, इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुल्लाहु अज़ाबल अकबर, जिसका दिल चाहे कुफर करे फिर जाए खुदा के दीन से ना माने, नतीजे में खुदा का अजाब है तुम नहीं दे सकते। दीन का एक लुगवी माने हिसाब भी होता है, मालिक यौमुद्दीन नहीं कहते, हिसाब किताब के दिन का मालिक है, किस चीज का हिसाब है, जो अल्लाह ने इस्लाम नाजिल किया इसको तुमने किस कॉल और फेल से कितना माना कितना नहीं माना, इसका हिसाब तुमसे अल्लाह लेगा। लेकिन नबी पाक सल्लम को भी हिसाब जिम्मेदारी नहीं थी, इधर तो हर मौलवी हिसाब ले रहा होता तो जानना कितने, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि हिसाब फइन्नमा अलैकल बलागो व अलैनल हिसाब, पहुंचा देना तुम्हारे जिम्मे हिसाब देना मेरे जिम्मे। आप में से एक तो हर शख्स ये जान ले कि खुदा ताला के कलाम को पढ़े बगैर उसको नहीं पता कि खुदा का दीन क्या है, पता ही नहीं। अगर किसी को कुरान नहीं पता तो उसे दीन नहीं पता, बेशक वो अहमदियों में पैदा हुआ, बेशक वो शियों में पैदा हो, बेशक देवबंदियों में पैदा हो, जितना मर्जी पैदा हो। हाँ, जब आप खुदा ताला के कलाम से अपने आप को रेक्टिफाई करते हो, अल्लाह बेजिक्रल्ला तत्मिल कलूब में भी यही मजमून है, जिक्र हदायत नसीहत को कहते हैं अरबी जबान में, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اشارہ تک قد جا بصائر من ربکم، اللہ کی طرف سے یہ روشنی ہدایت تمہارے لیے آ گئی، فمن ابصر فلنفسہ، اگر کوئی اس سے روشنی لے لیتا ہے اس کے نفس کا فائدہ ہے، فمن عامیہ جو اندھا رہنا پسند کرتا ہے وہ اپنے اس بات کا خود ذمہ دار ہے. یعنی اگر خدا تعالیٰ کا کلام کسی کو پڑھ، مثلا آپ کے جو بھی عقیدے ہیں، آپ ایم ڈی او میں پیدا ہو گئے نا، جو بھی آپ کے عقیدے ہیں، آپ نے خدا تعالیٰ کے کلام سے نہیں اگر ٹیلی کیے اور مطمئن ہیں تو آپ کا اطمینان اور ان کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں. کوئی بھی شخص آپ کو، مثال کے طور پر آپ کو کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ جی آپ کا فلانا عقیدہ خدا تعالیٰ کے کلام کے مطابق نہیں ہے، تو آگ لگ جانی چاہیے آپ کو کہ یہ دیکھو میں کہ کہیں واقعی ایسا تو نہیں ہے. جہنم اتنی بڑی سزا ہے کہ انسان کوئی بھی قیمت دے کے اس سے بچنا پسند کرے گا، اور جنت اتنی بڑی بشارت ہے کہ انسان کوئی بھی قیمت دے کے اسے حاصل کرنا چاہے گا. اور جب ایک مسلمان بڑھتا ہے، خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، تو خدا سے یقینی ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کا اندھا نہیں رہتا. مسیح صاحب جو فرماتے ہیں نا کہ کیا ہی بدبخت ہے جسے پتہ نہیں کہ خدا ہے. ہمارا خدا سے کم از کم تعلق سچے خوابوں کا ہوتا ہے، الہاموں کا ہوتا ہے، کشوف کا ہوتا ہے. نہیں ہوتا تو ہم توجہ کریں اس طرف کہ نہیں ہوتا، خدا سے ہمارا تو کوئی بھی تعلق پیدا نہیں ہوتا، لیکن انہی کا تعلق پیدا ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے کلام کے پر عمل کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. اور جب اسے پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے انہیں پتہ لگ جائے گا کیا کیا ماننا ہے، کس طرح ماننا ہے، ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. اگر آپ کا اطمینان خدا تعالیٰ کے کلام پر ہے تو آپ کا اطمینان درست ہے، اور اگر آپ کا قلب کا اطمینان اس کے علاوہ کسی بات پہ ہے تو وہ غلط ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کے علاوہ قلوب کا اطمینان خدا تو نہیں مان رہا. اگر خدا کے ذکر کے مطابق آپ کا اطمینان ہے تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق نہیں ہے تو غلط ہے. درست کا پتہ کرنا دو لحاظ سے بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ کو حکم پتہ ہوں گے تو مانیں گے نا، حکموں کا نہیں پتہ تو مانیں گے کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ لگے گا آپ ٹھیک ہیں جب آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا فرمایا؟ ہاں آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، میں یہ بات مانتا ہوں، یہ بالکل اسی کے مطابق ہے، پھر اطمینان ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کال اور فیلڈس، ان کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل آپ کے ساتھ خود ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو خود بھی نظر آتے ہیں اپنی زندگی میں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے اس کا تعلق پیدا نہ ہو جو خدا کی اطاعت کر رہا ہوں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کے مطابق بن رہا ہوں، ممکن ہی نہیں. تو جہاد کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے. ایک دوسرا پہلو بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ پہلو میں اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو جب کہوں تو آپ کلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کریم کھول کر کنفرم کریں کہ یہ باتیں درست ہیں. میری باتیں سن کر گھر چلے جائیں گے تو دو چیزیں ہوں گی، ایک تو آپ بھول جائیں گے، ایک آپ کا معاملہ کان والا ہوگا، اور کان والا معاملہ ہمیشہ ہی غلط ہوتا ہے. دین آنکھ والا معاملہ ہے. حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ اور سچ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ چار انگلیوں، جھوٹ تم سن لو گے تمہاری آنکھیں اس کی گواہ نہیں بنیں گی. جب آپ قرآن کریم کھولیں گے، ان آیات کو خود دیکھیں گے، اس پر تحقیق کریں گے، دعا کریں گے، ایک تو آپ کو وہ باتیں یاد رہیں گی، एक आपका इत्मीनान खुदा ताला उसको कबूल करता है कि इत्मीनान इसका ठीक है क्योंकि खुदा के अल्लाह ताला ने यही नाजिल फरमाया। फिर मामला आंख का होता है, कहते जा बसायरो में रब्बकुम, हमें क्या पता, हमने तो देखा ही नहीं, आपने तो फिर सुना, मुझसे सुन लिया, तो उन्होंने अपने मौलवी से सुन लिया, फर्क क्या पड़ा? अगर आप मुझसे ठीक जो से सुनते हैं उसको ठीक समझ लेते हैं तो आप में और दूसरों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैं गलत क्यों नहीं बता सकता, पहले ये वजह बताए, क्योंकि आप कहते हैं कि हमारा बंदा इसलिए गलत नहीं बताएगा, ऐसा नहीं होता। मैं दानिश्ता भी गलत बता सकता हूं, मैं ना दानिश्ता भी गलत बता सकता हूं, आपने कंफर्म करना है कि मैंने ठीक बताया या मैंने गलत बताया। तहकीक का सफर खुद शुरू किया जाता है। अल्लाह ताला जब फरमाता है या अय्युहल लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, आप अपनी जिम्मेदारी उस वक्त तक पूरी नहीं करेंगे जब तक कुरान करीम खोल कर कन्फर्म नहीं करेंगे, हर बात उसको पढ़ेंगे नहीं, ऐसे सफर का कोई फायदा नहीं। किसी की बातें सुनना ठीक है, एक जगह बैठ कर तवज्जा होती है किसी तरह, जमात का ये मकसद तो पूरा हो जाता है, लेकिन अगर आप जाके उसे खुदा कलाम से कन्फर्म नहीं करते, खुदा के कलाम को समझने की कोशिश नहीं करते, तो फिर वही वाला मामला आ जाता है कान वाले के, आपने भी कान पे डिपेंड किया, कान पे डिपेंड नहीं। कुरान करीम कहीं पे भी गुमराही से निकालने के लिए एक दफा भी नहीं कहता कि क्या तुमने ऐसा देख सुना, हमेशा अल्लाह ताला मत अफला यारो, देखते हो ऐसा कभी देखा इस तरह, सुनने की तो बात ही नहीं करता अल्लाह कि तुमने सुना, सुन तो रहे होते सारे, आप भी सुन रहे हैं, खुदा के कलाम को जाकर देखेंगे तब आपको पता लगेगा। हज़रत नसीम अस्सलाम, मैं आपको उनकी इबारत पकड़ता हूँ कि उन्होंने पहली बात तो ये कि दीन के लिए जंग और किताल हराम, ये कुरान भी कह रहे हैं, एक जुमले से आप समझ लेते हैं, हराम कहते किसे हैं, किसी अहले हदीस को दादाता साहब से खीर ला के खिलाए ना, देखें क्या कहेगा, कहेगा हराम है पीछे का, तो खीर हराम नहीं होती, गैर अल्लाह के नाम से मंसूब होने की वजह से हलाल चीज हराम है, क्यों खुदा ताला के हुक्म के मुताबिक नहीं। जहां पे आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कोई दीन का फेल, वो तो हलाल है, उसी को अगर खुदा ताला के हुक्म के खिलाफ आप करेंगे तो हराम हो जाएगा। अल्लाह ताला ने आपको कहीं पे भी किसी बेगुनाह या गुनाहगार को इस तरह मारने की इजाजत नहीं दी, किसी पर हमला करने की इजाजत नहीं दी, दी ही नहीं। मिसाल के तौर पर कश्मीर है, मैं आपको एक मोटी मिसाल देता हूं, कश्मीर में जो भी कहानी डेवलप कर दें, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान औरतों के साथ जो ज्यादतियाँ कर रहे हैं, ये जो भी आप समझने के 100% ठीक है, कुरान करीम का ये दावा है ना, कुल्लो शाइन आसैन ओफ इमाम मुबीन, के दीन की हर बात अल्लाह ने इस इमाम किताब में खोल कर बयान कर दी, हर बात, वला असगर व मिनज़ाल का वला अकबर इल्ला फी किताब मुबीन, कोई छोटी से छोटी ऐसी बात नहीं या बड़ी से बड़ी जो अल्लाह ताला ने ना खोली, मैं मफरत ना फिर किताब में नीचे कुछ भी नहीं छोड़ू, इतना बड़ा इशू है कि जान देने के लिए आपको इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठे होने में तो कोई हर्ज नहीं, अगर अल्लाह कह रहा है जान दो तो दे दो, उसमें क्या बहस है, जान तो जानी जानी है, जान तो नहीं रुक सकती किसी की, अगर कोई कहे कि मैं जान बचा लूंगा तो वो मोहम्मद बख्श वाला शेर है कि जान फंसे शिकंजे अंदर वेलने में जू करना, रो नु को वो रवे हूं अंदर हूं जे रवे तमन्ना, जब मौत का फरिश्ता आया था रोक के दिखाओ, साड़ी अकड़ तो उस चीज की बुनियाद पर थी ना, गन्ना खड़ा हुआ था, जब बेलने में आता फिर खड़ा रह के दिखाया ना, फिर रोक के दिखाया, जान तो जानी है, अगर अल्लाह के हुक्म पर चली जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई, लेकिन अल्लाह का हुक्म तो कोई दिखाए कि है, ये तो कन्फर्म करें अल्लाह का ये हुक्म है। तो कुरान करीम में हम कुरान और सुन्नत को देखेंगे ना हर मामले में। अब आप कुरान और सुन्नत जब आपके इलम में होगा, आप उनको कह सकते हैं कि ठीक है मुझे तुम दिखा दो, ये बात तो मैंने तो देख ली ना, इसके अलावा कोई बात है तुम दिखा, कुरान की बात हो तो हम साथ, कुरान करीम में इसकी इजाजत नहीं दी, सुनते रसूल सस्म में भी इसकी इजाजत नहीं है कि आप उन पर हमला करें, आप ये बीच में ग्रुप बना बना के भेजें उनको डिस्टर्ब करें, इसका मतलब आप मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आपके और इस्लाम में मुआहिदों की बड़ी हैसियत है कि आपने किसी से मुआहदा किया तो उसको इस तरह, क्योंकि इस्लाम में और उनमें फिर फर्क क्या रह जाएगा, आपको इजाजत ही नहीं मुआहदा तोड़ने की किसी भी मुल्क के साथ। और ये आयत नंबर भी मैं आपको बताऊँ 73 है गालबन सूरह इनफाल की, ये 73 है, ठीक है। वल्लज़ीन आमनु वलम युहाजिरु मा लकुम मिन वलायतिम मिन शय हत्ता युहाजिरुकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग ईमान ले आए उन्होंने हिजरत नहीं की, उधर ही रह गए, जिस तरह हिंदुस्तान से बहुत सारे लोगों ने कर ली, दूसरे जो ईमान वाले थे उनमें से बहुत सारे लोगों ने। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम पर उसकी कोई जिम्मेदारी अल्लाह ने, हत्ता युहाजिरुकुम, जब तक कि वो हिजरत करके तुम तक ना आ पाए, अल्लाह ने ये जिम्मेदारी तुम पर नहीं डाली। अब अल्लाह कह रहा है मैंने डाली, दूसरा कह रहा हूं मैंने डाल दी है। स्टेट जहाज जब भी करेगी स्टेट करेगी, इंफरादी तौर पर आप ग्रुप बना के ये काम कर ही नहीं सकते, कुरान आपको इजाजत नहीं देता, इस बुनियाद पर हमला करने की इजाजत नहीं देता। आप इसकी सबसे बड़ी बात उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देख लें, जो सुलह हुदैबिया हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ एक रोया की बुनियाद पर चले थे, जो गलत हो ही नहीं सकती थी, एक पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोया थी, और 1400 जान निसार करने वाले सहाबा साथ थे। तो जिस वक़्त वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कासिद के तौर पर अंदर गए थे, बातचीत की, बहुत देर हो गई, ये खबर फैल गई कि शहीद कर दिया उनको किसी ने, तो चूंकि ये माहदे के मुताबिक नहीं था कि आप कासिद को शहीद करें, उस पर फिर जहां माहदे के खिलाफ वर्दी का देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैत ली, हालांकि समाने हर्ब लेकर नहीं प्रॉपर चले थे। उस वक़्त जंग करना एक बज़ाहिर खुदकुशी नजर आता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे, और जब बैत ली उनसे उसी को बैत रिजवान कहते हैं ना, उन्होंने जान देने की बैत की, हम सब जान देने की, लेकिन उस असना में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ लाए, सुहेल बिन उमर जो बाद में मुसलमान हो गए थे वो उनके साथ, जो भी मुआहदा दरमियान में लिखा गया, अबू जंदल जो मुसलमान था और मुसलमान होने की वजह से शदीद जुल्म का शिकार था, शदीद तशद्दुद हो रहा था, जंजीरों में जकड़ा हुआ, किसी तरीके से निकल के रसूलुल्लाह ससम और उन 1400 सहाबा के सामने आके गिर गया और कहा कि मुझे बचा। आप ससम ने उससे कहा, सुहेल बिन उमरों से, कि नहीं तुम एहसान के तौर पर या तो इसे हमें दे दो, तुमने तो इसे मारना ही है, या फिर इसके इवज जो चाहो। उसने कहा कि नहीं, दोनों बातें मंजूर नहीं, ना किसी चीज के इवज दूंगा ना एहसान करूंगा। अब 1400 सहाबा तो उसे छुड़ा नहीं सकते थे, अब वहां पर तो सुहेल बिन उमरों ही था ना, आप सब ने हुक्म दिया कि तुम वापस और सब्र करो, खुदा तुम्हारे, और नहीं उसको कहा कि नहीं हमारा एक मुसलमान भाई है इस पर जुल्म हो रहा है, नहीं इसको वापस छीनेंगे। फिर कुरान करीम इसी आयत में आगे जाके कहता है कि अगर वो दीन में तुमसे कोई मदद तलब करे, जैसे हमारे मुसलमान भाई हिंदुस्तान में फर्द करें या किसी ऐसे हमसाए मुल्क में हैं, हमसे दीन में कोई मदद करते हैं, उनके यहाँ दीनी किताब नहीं मिलती, कुरान करीम फर्द करे नुस्खे नहीं हैं, दूसरी अहदीस और फैसलता और दूसरे नुस्खे नहीं हैं, दीनी कुतुब नहीं, तो फरमाया कि तुम ज़रूर उनकी मदद करो, लेकिन तुम्हारे और उस मुल्क के दरमियान मुआहदा होना चाहिए, इस मामले छुप के नहीं देना, दीनी किताब भी छुप के नहीं देनी, मुआहदा करके उनसे कहो कि ठीक है ये अमन वाली चीज़ है, इन मज़हब एक फंडामेंटल राइट्स में आता है, इनको हम देना चाहते हैं, तू दिखा दे, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फितना पैदा होगा जो फसाद बन जाए। पढ़े तो इसे सूरह अनफाल आयत नंबर 73, 74, 75 खोल के पढ़े, और कोई शख्स पूरा कुरान करीम खोल कर दीन के लिए किताल का हुक्म
दिखा दें
कि दीन के लिए किसी को कत्ल करने की, किसी पर हमला करने की कुरान इजाजत देता। फिर इस चीज की इजाजत देता है कि गैर मुस्लिम की अगर हम रियाया हों तो बगावत करते हैं, कुरान इजाजत देता है, मना करता है। सूरह मुमताहिना जो है अल्लाह तरफ मत है कि ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युकातिलुकुम फिद्दीन वलम युखरिजुकुम मिन दियारिकुम, अल्लाह नहीं मना करता उन लोगों के बारे में तुमसे जो तुमने दीन के लिए कत्ल नहीं करते और तुम्हारे तुम्हारे तुम्हें तुम्हारे घरों से भी नहीं निकालते। अंत बरू पतुक से तुम इन अल्लाह युबुल मुक्सिम, तुम उनसे बेहतर से अदल करो, अल्लाह इन बातों से मोहब्बत करते। अब अंग्रेज का जो दौर था, आप कोई तारीख उठा के देखें और अपने आप को पढ़ने की आदत डालें ताकि आपको जब आपको हकायक का इलम होगा तो आप खुद भी एक बात को समझें। एक तवील अरसे तक 200 साल तकरीबन एक तवील अरसे तक मुसलमान जुल्म और सितम का शिकार रहे और सिखों ने बहुत जुल्म किया मुसलमानों, इनकी इबादत गाहों को अस्तबल बना लेते थे, औरतों को उठाकर वैसे ले जाते थे और इंतहा कर दी थी। मैं आपको उसकी हवाले के साथ, ये मौलाना सऊद आलम साहब नदवी की लिखी किताब है हिंदुस्तान की पहली तहरीक, उसमें वो लिखते हैं कि सिखों के मजालिम उनके सामने थे, मुसलमानों की असमत व आबरू महफूज न थी, उनका खून हलाल हो चुका था, मस्जिदों से अस्तबल का काम लिया जा रहा था, गरज मजालिम का एक बेपनाह सैलाब था। इस वक्त पंजाब में सिख शाही का दौर था जो पांच दरियाओं की मुस्लिम आबादी को बहा ले जा रहा था, आँख सब कुछ देखती थी मगर गवाह अमली तौर पर मफलूज थे। और इसी तरीके से तुलसी राम साहब लिखते हैं कि सिखों का तरीका गारतगरी और रोज़ की लूट मारता, जो हाथ में आता था लूट कर अपनी जमात में तकसीम कर लेते थे, मुसलमानों से उनको बड़ी दुश्मनी थी, अजान यानी बांग बावाज़े बुलंद नहीं होने देते थे, मस्जिदों को अपने तहत में लेकर इनमें ग्रंथ पढ़ना शुरू कर देते थे, इसका नाम मौत कड़ा रखा था। ये तुलसी राम की किताब है शेर पंजाब, जिसका मैं आपको हवाला पढ़ के दे रहा हूँ। जब अंग्रेज आया तो अगर आप तारीख को देखें तो गैर मामूली तौर पर मुसलमानों को उसने आज़ाद कराया, इस जिस इलाके की बात करूँ पंजाब की, और हर किस्म की मजहबी आज़ादी दी और तहफ़ दिया। जिन्होंने पुराने बुजुर्गों को देखा होगा वो अंग्रेज का दौर याद करते थे, उनका इंसाफ याद करते, और किसी किस्म का जबर उनका नहीं था। तो हज़रत मसीह अस्सलाम किन अल्फाज में ये हुक्म देते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। हज़रत मसीह अस्सलाम अरबी ज़ुबान का इनका फतवा है जो तोहफ़ा गोलड़विया के सफ़ा नंबर 82 पर है, फरमाते हैं कि बला शुबा इन दिनों मुल्क हिंद में मूजबात जहाद मौजूद नहीं, जिस वजह पर अल्लाह के ने जहाद की इजाज़त दी है वो मूजबात मौजूद नहीं है, इसलिए इस मुल्क में मुसलमानों पर हराम है कि दीन के नाम पर लड़ाई करें और मुनकरीन शरा को कत्ल करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अमन और आफियत के ज़माने में जहाद बमानिय कताल सराहतन हराम करार दे रखा है कुरान करीम ने। फिर फरमाते हैं किश्ती नूह में सफ़ा नंबर 75, बाज़ नादान मुझ पर इतराज़ करते हैं, जैसा कि साहिबुल मीनार ने भी किया कि ये शख्स अंग्रेज़ों के मुल्क में रहता है इसलिए जहाद की ममानत करता है, ये नादान नहीं जानते कि अगर मैं झूठ से इस गवर्नमेंट को खुश करना चाहता हूँ तो बार बार क्यों कहता हूँ कि ईसा इब्ने मरियम सलीब से निजात पाकर अपनी मौत तबई से बमुकाम श्रीनगर कश्मीर दफन हो गया, और ना वो खुदा था ना खुदा का बेटा था, क्या अंग्रेज़ मजहबी जोश वाले मेरे इस फिक्र से बेजार ना होंगे। बस सुनो ए नादानों, इस गवर्नमेंट की कोई खुशामद नहीं करता, बल्कि असल बात यह है ایسی حکومت جو دین اسلام اور دینی رسوم پر کچھ دست اندازی نہیں کرتی اور نہ اپنے دین کو ترقی دینے کے لیے تلوار چلاتی ہے. قرآن کی روح سے جنگ مذہبی کرنا حرام ہے. پھر اسی طرح حضرت نصر صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب نور الحق میں کہ اس نکتہ چین پادری اماد الدین جو جہاد کے موضوع پر اسلام پر اعتراض کر رہا تھا, فرمایا کہ اس نکتہ چین نے جو جہاد اسلام کا ذکر کیا ہے وہ گمان کرتا ہے کہ قرآن بغیر لحاظ کسی شرط کے جہاد پر انگیختہ کرتا ہے. سو اس سے بڑھ کر اور کوئی جھوٹ اور افتراء قرآن شریف پر نہیں لگ سکتا, یعنی بہت بڑا افتراء اور جھوٹ ہے قرآن کریم پر. صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیتا ہے قرآن جو خدا کے بندوں کو اس پر ایمان لانے اور اس کے دین میں داخل ہونے سے روکتے ہیں, اور اس بات سے کہ خدا کے حکموں پر کاربند رہا جائے, اس کی عبادت کی جائے. وہ جو قتال کے ذریعے ان چیزوں سے روکتے ہیں ان سے قرآن لڑنے کا حکم دیتا ہے. جو مسلمان بے وجہ لڑتا ہے اور کسی کو کسی گھر سے نکالتا ہے اور خلق اللہ کو جبرن اپنے دین میں داخل کرتا ہے اور جو دین اسلام کو نابود کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکتے ہیں, تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا اور وہ پائے. قرآن کریم اجازت ہی نہیں دیتا. بعض اوقات ایک لائن جوڑ کر دکھائیں تو بڑا عجیب سا مضمون لگتا ہے. جس طرح وہ کہیں جی قرآن تو حکم دیتا ہے جہاد کا, مرزا صاحب کہتے ہیں آرام ہے. اب اگلا بندہ کہے کہ ادھر کی جواب دے. تو جو بھی بات ہو اسے قرآن کریم پر دیکھیں, غور کریں. لیکن دلچسپ چیز یہ ہے کہ حضرت مسیح اسلام کے زمانے میں جتنے مسلمان اخبار تھے اور یعنی جو دینی اخبار تھے وہ اور جتنے عیسائی تھے, یہ دونوں مل کر ثابت کرتے تھے کہ مرزا صاحب سے بڑا انگریز کا دشمن کوئی نہیں, اپنے آپ کو دوست بتاتے تھے. اور اب میں ان کے حوالے آپ کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں. مولانا سید احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے کہ ہندوستان دارالاسلام ہے اور اس کو دارالحرب کہنا ہرگز درست نہیں ہو سکتا. ہم نے تو دارالاسلام نہیں کہا اسے. پھر مولانا رشید احمد گنگوہی جو دیوبندی تھے فرماتے ہیں کہ میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بیکار نہ ہوگا, اگر مارا بھی گیا تو سرکار کو اختیار ہے کہ جو چاہے گا. پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب فرماتے ہیں, اچھا وہ یہ اور مضمون, مولانا شورش کشمیری چٹان اخبار میں لکھتے ہیں کہ انگریزوں کے اولو الامر ہونے کا اعلان کیا اور فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے. انگریزوں کا یہ خودکاشتہ پودا کچھ دنوں بعد ایک بڑی مذہبی تحریک بن گیا. یہ احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں لکھتے ہیں. ان کا اخبار پھر ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ انگریزوں نے بڑی ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ نجیت کا پودا ہندوستان میں اپنے ہاتھوں سے لگایا اور پھر اپنے ہاتھوں سے پرواز کیا. اس کے بعد بڑے بڑے فتوے ہیں ہندوستان کے حق میں جو مطلب جس طریقے سے مولانا محمد صاحب بٹالوی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ, ایک تو ان پر حضرت صاحب کے بارے میں لکھا کہ گورنمنٹ ان پر کبھی اعتبار نہ کرے. فرماتے ہیں گورنمنٹ کو اس کا اعتبار کرنا مناسب نہیں اور اس پر حذر دینا ضروری ہے, ورنہ مہدی قادیانی اس سے اس قدر نقصان پہنچنے کا احتمال ہے جو مہدی سوڈانی سے بھی نہیں پہنچا. اور باقی یہ لمبے چوڑے فتاوے ہیں جو ان کے اخباروں کے ہیں کہ ہندوستان دارالاسلام ہے, انگریز اولو الامر ہے اور ہر صورت آپ کو اس کی اطاعت لاتی. ہم نے نہ ہندوستان کو دارالاسلام قرار دیا نہ انگریز کو اولو الامر کہا, صرف یہ کہا کہ قرآن کریم ایسی حکومت کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہمیں جو دین کے لیے تلوار نہیں اٹھاتی یا لوگوں مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے دخل نہیں کرتی یا ہمارے دینی معاملات میں رکاوٹ نہیں ڈالتی. ایسی صورت میں قرآن ہمیں اجازت نہیں دیتا. تو میں نے قرآن کریم کا حکم بھی پڑھ کے بتایا پورا ممتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات بتائی. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی ایشو ہو، ہم ضرور قرآن کریم کو کھولیں اور ضرور ان تمام مضامین پر، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، والا معاملہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہو ہم کہ کتاب کے کسی حصے کا ہمیں پتہ اور کسی دوسرے حصے کا پتہ ہی نہیں، ہمیں دونوں حصوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب اس بارے میں کوئی دوست کو سوال کرنا چاہے. بات میں سمجھ گیا ہوں، کہ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اطیع اللہ اطیع رسول کے کچھ کہا ہے، اب پوری آیت پڑھے، اطیع اللہ و اطیع رسول و اولو الامر منکم، تین اطاعتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی، حکم دیا کس کی اطاعت کرنے کا، اللہ کی پہلی، دوسری کون سی اطاعت کا حکم دیا، سورہ نساء ہے، اللہ کے رسول کی، تیسری کون سی اطاعت کا، وہ اولو الامر منکم، اور جو امیر تم پر مقرر ہو، جو امر ہو، اس کے آگے کیا ہے، وہ ان تنازع تم فی ہے من شے ردو اللہ والا رسول، تنازع کرنے کی اجازت اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ہے، لیکن اولو الامر کوئی ایسی بات کہتا ہے جو خدا اور اس کے رسول سے مصادم ہے، اس کے رسول کے مطابق نہیں ہے، سرسم کے مطابق یا خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، وہاں پہ اس کی اطاعت چھوڑنے کا حکم ہے، فردو اللہ ولا رسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس آؤ. تاریخ کے حالات بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، اب تک کون سی بات کیا پہنچی ہے، آپ کربلا سے ہی دیکھ لیں، یزید رضی اللہ عنہ ہے، دوسری طرف کیا ہے، تاریخ ہے دونوں طرف، جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اہل تشیع اس تاریخ کو ٹھیک مان لیں، آپ اس تاریخ کو ٹھیک مان لیں، سیاولک تو پرانی بات نہیں ہے، ابھی بھی مرد مومن مرد حق کی تاریخ موجود ہے، آپ اور میں تو چلے جانتے ہیں، 500 سال بعد کسی کو کیا پتا تھا سیاولک نے کیا کیا، وہ تو کتاب ہی پڑھے گا نا، تو کتاب پڑھ کے اگر اسے سجدہ کرنا شروع کر دیں تو آپ کیا بگاڑ لیں گے اس کا، وہ تو بار بار چومے گا کہ اتنا پیارا بندہ، تو تاریخ کی کوئی وقت نہیں ہے، نہ ہم اس پر بحث کر سکتے ہیں، ہم دو چیزوں پر بحث کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے کہ نہیں. حضرت عمر فاروق نے اگر کوئی ایسی حرکت کی، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی نہیں کی ہوگی مجھے پتہ ہے، لیکن میں ایک سے بات کر رہا ہوں، بہت ساری جنگیں جو ایسی ہیں ان کے اندرونی محرکات نہیں پتہ ہوتے بعض لوگوں کو، جس طرح فتح مکہ کے پر بیسیکلی مسلمانوں نے حملہ کیا تھا، اندرونی باتیں آپ کو کتنے بندوں سے پتہ لگیں گے، کہ آپ کو کن سازشوں کا پتہ لگا تھا، انہوں نے کن معاہدہ بازی کی تھی، کہاں سے آپ کو یہ پتہ تھا کہ یہ طاقتور ہو کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، کس بیس پر آ کے آپ نے وہ حملہ کیا تھا، نہیں ٹھیک ہے میں منتقل ہوں، کوئی بات. وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اندرونی باتیں، وہ ڈائلاگس کسی نے ضرور جوڑ دی اپنے مقاصد کے لیے، دین ایسے بگڑتے ہیں، لیکن یہ جو قیامت تک کے لیے محفوظ دین کیا اللہ تعالیٰ نے، یقیناً اس کی حفاظت کسی وجہ سے ہی فرما رہا ہے، اللہ کا کلام بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک محفوظ ہے نا، وہ حجت ہے یا وہ تاریخ حجت ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر حضرت عمر فاروق نے غلط کیا نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم اس کے جواب دے نہیں، وہ جواب دے ہوں گے، دوسرا ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو کیا ہوگا یقیناً قرآن و سنت کے مطابق کیا ہوگا، ہمیں اندرونی محرکات نہیں پتہ، تاریخ میں غلطیاں ہوں گی، یقیناً ہوں گی، اور اگر کیا تو بحث ہی نہیں، اللہ نے کہہ دیا اگر اللہ اس کے رسول سے متصادم ہو تو فردو اللہ ولا رسول، ہمیں اس پر بحث کرنے کی، تو اللہ اس کے رسول کی ماننی ہے، ادھر ہی جانا ہے، تاریخ کو دیکھیں گے تو تاریخ تو کیا کیا دکھا سکتی ہے آپ کو، یہ جو تبرہ کر رہے تھے بیٹھ کے 3 صحابہ پر، خلفاء جو شیخین ہیں وہ تاریخ کی وجہ سے کر رہے تھے، ان بیچاروں کو ذاتی دشمنیاں نہیں ہیں، وہ جو رو رہے ہوتے ہیں وہ تاریخ کی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں، जो हासिल होते हैं वो भी उसी की वजह से हासिल होते हैं। दीन में तारीख को जेर बहस नहीं लाया जाता कभी भी। दीन में ये लिखा है, अल्लाह ताला ने लिखा है, इसका मतलब तारीख ठीक है, ये नाउज बिल्लाह गलत थी। हमें तो उसकी अल्लाह के अनम लोगों में शामिल होने के लिए दो ही शर्तें रखी ना, मैयतिल्ला व रसूलाय का मल्लदीन अनम अल्लाह अलैह, तीसरी तो कोई शर्त ही नहीं। इस तरह की बहुत सारी तारीखें हैं, बहुत सारी रवायतें हैं। इवन हदीस अगर आप खोल लें, सिर्फ बुखारी खोल लें, आप चार हदीसें निकालेंगे, चारों एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही होंगी। बाकी चीज़ों पर क्या करेंगे आप? और मैं समझता हूँ कि बुखारी मुस्तनद तरीन किताब है जो कुरान करीम के बाद आप समझ सकते हैं। अगर बुखारी में ऐसे मामलात हैं तो फिर वो वाली वजह लॉ का आना मीन बगैर वजह तो फिर ये इख्तलाफ में कसीर, तो अल्लाह की यही बात है, अल्लाह के अलावा किसी का कलाम होता है तो इसमें कसीर इख्तलाफ होता, सिर्फ अल्लाह का कलाम पाक है रैप से इख्तलाफ। हमने अल्लाह के कलाम के मुताबिक होना है, इसका मतलब हम इस्लाम पे हैं। कोई चीज़ उसके मुताबिक नहीं है तो या हम तक गलत पहुंची है, या उसके कुछ हिस्से टेढ़े मेढ़े हो गए, या हमने समझ दे, या फिर छोड़ दें। हमको जरूरत क्या है जरूर खुदा ताला के कलाम के मुखालिफ बात को लेकर पकड़ना है और कहना है चूंकि हज़रत उमर फारूक ने की थी लिहाजा तुसी भी करो। जंग जमल किसने की थी, वो हवाले दे सकते हैं किसी को? नहीं दे सकते। फिर हमारी तारीख तो वहीं रह गई। मतलब एक जगह की कमान तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दी थी, उसमें क्या कहेंगे आप? अब क्या कुरान और सुन्नत, आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान करीम की मुफस्सर ऐसी थी कि सुहाबा उनसे जाके समझा करते थे, बड़े बड़े जय्या सुहाबा कुरान करीम उनसे समझते थे, ऐसी मुफस्सर थी कुरान करीम। जंग जमल में क्या हो गया था, साजिश का शिकार भी थी, क्योंकि उस उन तफासिल की इस वक्त मैं तारीख में जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, ये वार्निंग इधर से मिली आपके सामने, ठीक है। तो वो मैंने जान के उस तारीख को नहीं खोल रहा जो वो बयान कर रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ तारीखें करे करें।
जब आप अभी बता रहे थे तो एक आपने बात की थी कि गैर किसी नबी जो है वो कुछ एडिशन कर सकते थे, आपने कुछ कहा था ना कि आपसे किसी ने पूछा कि गैर किसी नबी,
मैंने कहा नहीं
नहीं कर सकता। तो अब जो गैर किसी नबी होता है वो शरीयत के ताबे आते हैं, तो एक अब एक्शंस जो है इस्लाम में दो तरह के होते हैं, मतलब नहीं और भी तरह के होते हैं, लेकिन एक होते हैं वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी सॉरी एक होते हैं वाजिब वाजिब, जैसे बाकी वो सलात व ज़कात की नमाज ज़कात वगैरह ये सब उन पे फर्ज है। फिर दूसरा नफल जो है वो वॉलेंटरी है, अगर पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो उसका गुनाह नहीं होगा। तो भी जो है वो ये हम इल्जाम लगाते हैं कि जी आप जो ये लाजमी चंदा जात देते हैं, ठीक है, इस्लाम में तो सिर्फ द ओनली फंड्स दैट हैव बीन मेड कंपलसरी इज ज़कात। तो वो ये पूछते हैं कि जी ये चंदा जो है ये आपने कैसे मतलब कि एक वाजिब करार दे दिया अपने कम्युनिटी के मेम्बर्स पे। तो अगर मैं वैसे इसका जवाब आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि जी जो हम लाजमी चंदा जात देते हैं वो जहाज से माल है, क्या ये जवाब इसका सही है? दूसरा ये अगर हो सके वो मान ही रहे, फिर वो उस बहस पे आ जाएंगे। अच्छा फिर ये बताओ कि ये जो 116 बैच
पहले एक बात पे रुक गए, सवाल तो रुक गया आपका,
अच्छा चलेंगे
अब तो दूसरा इसके आगे दूसरा सवाल आ जाएगा।
चले वो ये बता देंगे इसका क्या जवाब।
पहली बात है कि कौन सी दो चीजें दीन थी पहले ये बताए, दीन कौन सी दो चीजें थी, कुरान और सुन्नत। अल्लाह ताला ने एक ही उसको बताया ना, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, ठीक है। अब आपको भी मैं ये कहूंगा कि ना आपने शायद कुरान पढ़ा है ना उसवा देखा है, ये सवाल उसी वक्त पैदा होगा जब आपने ये दो चीजें नहीं देखी। कुरान करीम तो में तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तुझसे ये पूछते हैं माज़ा युनफिकु, अल्लाह ने जो दिया है उसमें से अल्लाह को कितना दे, जो भी अल्लाह हमें दे हम इसमें से अल्लाह को कितना दें, अल्लाह तक इनको कहता हूँ जो तुम उससे ज्यादा दे। ज़कात कहाँ गया? जो भी अल्लाह की तुम्हारी जरूरत से ज्यादा अल्लाह तरफ मत के दे दो, अल्लाह ने तुमसे तुम्हारे माल और तुम्हारे नफ्स खरीद लिए, बैत इसी के किए, अपने माल भी अल्लाह को दे दो अपने नफ्स भी अल्लाह को दे दो, इसके बदले अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। پھر حضرت ابو بکر صدیق نے جو کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑا ہے تو زکات سے کتنے پرسنٹ زیادہ تھا بتائیں گے؟ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آدھا لے آئے ہوں اور آدھا چھوڑا ہوں، یہ کتنے پرسنٹ تھا؟ 10% زیادہ ہی تھا نا. پھر آپ سارا دور، پھر رسول کے انسم کا اپنا اسوہ کیا تھا، کیا دیتے تھے اللہ کے رستے میں؟ اسوہ تو وہ ہوا نا کہ ماذا ينفقون میں وہ کیا سمجھتے ہیں، ان کے اسوے سے ثابت ہوگا نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات آدھا آدھا مہینہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ہم دو کھجوریں سوکھی روٹیوں پر رکھ کے کھا لیا کرتے. اور آپ سے سم تو ایک رئیس، جو عرب کی رئیس خاتون تھیں، ان کی ساری جائیداد تھی نا ان کے پاس. تو فاطمہ تو زورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیمار تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نو مسلم کو لے کر آئے جس کے گھر گندم نہیں تھی، آٹا نہیں تھا، کہ مدد کر دیں. ان کے اپنے گھر میں بھی نہیں تھا، انہوں نے اپنی چادر جہیز والی دی کہ اس کو بیچ کے دے دو. تو وہ گئے اور بیچ کے اس چادر کو، آدھا آٹا اس کو دے دیا، تو آدھا آٹا لے کے حضرت فاطمہ کی زورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدھی گندم لے. تو ناراض ہو گئے کہ کیا میں نے اس کو دیا نا، میرے لیے کو لے گیا. اور ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ان کے گھر میں گندم ہوتی تو یہ دے دیتی، نہیں تھی تو انہیں چادر دے. آپ سے سم اتنی دولت لے کر آئے تھے، تجارت کا بنیادی اصول کیا ہوتا ہے؟ آپ کی گڈ ویل. آپ سے سم سے زیادہ گڈ ویل تو کسی کی نہیں تھی. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں شامل ہوئے تو نفع کتنے گنا بڑھ گیا تھا، مال غنیمت میں کیا کچھ آتا تھا. شام سے پہلے فارغ کر دیتے تھے، 2.5% سے زیادہ ہی ہوتا تھا نا. اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا، جنہوں نے قرآن سمجھ کر نازل ہوا کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ خدا کے رستے میں دے دیا. اللہ بھی یہ، تعالیٰ بھی یہ فرما رہا ہے کہ نبلوکم بالشر والفتنہ، شر اور خیر دونوں تمہاری آزمائش کے لیے، دیا ہے تو بھی آزمانے کے لیے، لیا ہے تو بھی آزمانے کے لیے. تو چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی، یہ جو 2.5% ہے وہ تو ایک حصہ ہے. خدا کا مال خدا کو دو تو کیسے اللہ تم سے، اگر ایک بندہ کروڑ پتی ہے وہ 50-60 ہزار روپے دے دیتا ہے تو کوئی فرق پڑے گا اسے؟ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. تو اس نے اللہ کو تو کچھ نہیں دیا، جس چیز کے جانے سے آپ کو جانے سے فرق پڑنا چاہیے، تب آپ کو پتہ لگے کہ اللہ کو کچھ دیا آپ نے. آزمائش ہے وہ، مال اور نفس دونوں کو آزمائش کار، مال بھی اللہ نے لے لیا، نفس بھی لے لیا، کہنا چاہیے تو یہ دو چیزیں دینی ہیں اللہ کو. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ 10% ہے یا ایک 16 حصہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، اگر یہ نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ محروم رہ جائیں گے خدا کو حصہ دینے سے، کیونکہ انسان انفرادی تو بڑی سستیاں کر لیتا ہے، وہ 100 خرچے نکل آتے ہیں زندگی. وہ جو کہتے ہیں نا، وہ شعر تھا عبدالحمید آدم کا کہ عمر گھٹتی رہی خبر نہ ہوئی، وقت کی بات وقت پر نہ ہوئی، خواہشیں اتنی خوبصورت تھیں کوئی دل سے ادھر ادھر نہ. انسان اپنی خواہشوں کو بڑا عزیز دیتا، موت تک آ جاتا بندہ، وہ کہتا یار ابھی ہو جائے، ابھی ہو جائے، بھی ہو جانا چاہیے تھا، ساری خواہشیں عزیز رہتی ہیں، اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عمر گزر رہی ہے، ختم ہونے والی، خدا تک خالی ہاتھ پہنچ جاتا ہے. جی
انسان اپنا مطلب پیر ٹائپ کسی کو مانتا ہے تو تب وہ خدا تک پہنچتا ہے، تو तो सर क्या मतलब वो उस तक पहुंचने के लिए खुदा को किसी को इस तरह गाइडर मानना, तो इसमें क्या वो खुदा की जगह पे नहीं आ जाते?
पहली बात है, ये सवाल कहाँ से उठा है?
सर मैंने थोड़ा सा
मैंने मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कुरान करीम में कहीं लिखा पीर को मानने का?
नहीं सर, लेकिन मतलब पुराने क्रीम में तो
सूफी जो
मुझे
मर्जी कहता रहे, पादरी जो मर्जी कह रहे, सूफी कह रहे तो पादरी साहब भी कह रहे, अब सूफी कह किसे रहे? अतीउल्लाह और अती रसूल में तो सूफी नहीं आ रहा। अल्लाह ने तो कहीं नहीं कहा मुर्शिद फड़े हम बेड़ी नहीं पा रहे। तीन चीजें अल्लाह ताला ने मना की और फरमाया कि गुमराही की वजह हदायत की नहीं है, उसमें सबसे पहली गुमराही की वजह उलमा को करार दी, जिनको हम हदायत की वजह करार देते हैं। और अल्लाह ताला सूरह तौबा में फरमाते हैं अन्ना युफकूना, अगर तुम गौर करो कि धोखा कहाँ से खाते हैं, फरमाए इत्ताखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह, अपने उलमा और मशायख को रब समझ लेते हैं। तो दीन क्या चीज़ थी? मैंने पहले बताया कि अल्लाह का नाज़िल करदा कलाम दीन है, यानी इस्लाम तो वो है जो अल्लाह ने नाज़िल किया, वो इस्लाम। अल्लाह ताला ने तो हम पर यह नहीं कहा, मैं इस तरीके से वो जो सूफीज़म है रहबानियत आप इसको कहते हैं, और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है वह रहबानिया तब तदाऊहा माँ कतबना अलैहिम इल्लल्लाह रिज़वान अल्लाह, कि ये जो रहबानियत है ये तो उन्होंने खुद अख्तियार की थी, अपनी मर्जी से बना ली थी। अल्लाह ने ये हुक्म दिया था कि तुम खुदा ताला की रजा के मुताबिक करो अपने आप, अल्लाह के रिजवान के मुताबिक जो अल्लाह ने तुमसे कहा, अपनी मर्जियां ना करो दीन। अब मैं दो के बजाय तीन सजदे करने शुरू कर दूं, मैं कह यार मेरा दिल बहुत करता है अल्लाह में सजदे करूंगा, खुद करूंगा ना मैं, अल्लाह ने तो नहीं कहा। अब मैं कहूँ शादी नहीं करनी, मैं तो इतना बंदा नापाक हूं, मैं तजदा जानी है टाइम दे लोगों के किदा पाक है तजदा का किन्ना ख्याल है, तो मैं कुरान और सुनत से हट गया ना। अल्लाह ने तो आपको कुरान और सुन्नत से हटने की इजाज़त दी, जिस चीज़ की इजाज़त नहीं दी उस चीज़ का सवाल भी नहीं पैदा होता। सूफी क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते हमारे लिए ये मैटर नहीं है, अल्लाह ताला क्या कहता है, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा क्या है, ये सिर्फ हकीकत है। उसके मुताबिक जो चीज़ भी है दुरुस्त है, जो उसके मुताबिक जो चीज़ भी नहीं है वो गैर दुरुस्त है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बहस ही नहीं है। और दीन में बहस है ही नहीं, दीन में तो अतात का लफ्ज़ है, अतीउल्लाह व अती रसूल बहस का है, जो कहा अल्लाह ने उसके मुताबिक हो, जो अगर वो मैं कह रहा हूँ तो उसके मुताबिक नहीं है तो वो आप नहीं माने, आपको पता लग नहीं कि मैं भी गलत हूँ। जितना मर्जी बड़ा नाम हो आप उसे कैसे मान सकते हैं जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपको बात नहीं कह रहा है, जो उसमें रसूल से हटा के आपको चला रहा है ही नहीं। ठीक है, कोई दोस्त कोई भी सवाल करना चाहे तो
ये दो मेहमान है हमारे,
ठीक
अगर
है
इनका कोई सवाल
कोई सवाल नहीं, कोई तो करना चाहते हैं तो मुझे नहीं सवाल कोई भी करना चाहे, किसी भी तरह का सवाल करना चाहे तो आप जरूर। हाँ जी प्लीज, टॉपिक नहीं है तो मुझे पता नहीं था आपका इसलिए। नहीं अगर कोई सवाल इससे हटके भी है तो आप सवाल कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, चलो चलो जी जी पहले इसका मुख्तसर सा जवाब है, कोई इतना लंबा सवाल नहीं है, बिल्कुल सादा सा सवाल है, सादा सा जवाब। तारीख इस्लाम के मुताबिक मुसलमानों पे ये सबसे बड़ा गम का दिन था, ठीक है, और इतना बड़ा गम का दिन था कि हज़रत ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के एक सहाबी जिनका नाम हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, जो नाबीना थे, जब उन्हें पता लगा तो तकरीबन दीवाना दीवाने हो गए। और एक शेर जो उनका तारीख में लिखा जाता है उस वक़्त का, उन्होंने फरमाया कुंतस्सवा वाले नाज़री फ़हमी अलैकन नाज़ू मनशा बाद का फल मत अलाई का कुन तू हाल, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आँख की रोशनी तो तू था, मैं तो तुझसे देख रहा था सबको, आज अंधा हो गया। और जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है बंदे को उसके ख्वाब ही बड़ा होता है, जैसे माँ बच्चे को कहती है इधर ना जा इधर ना जा, पढ़ती क्यों, उसको मोहब्बत होती बहुत ज्यादा। तो उनको ये ख्वाब लगा रहता था कि आप ससम से जुदाई कभी ना हो। तो जब जुदाई की खबर की मिली तो कहते हैं मनशा बादा का फल ये मत, अब मेरी तरफ से सारे मर गए, अलाई का कुंतु हाल, यानी जब तू ना हाजिर रहा तो मेरी क्या बस्ती है और बाकियों की क्या हैसियत, सब मर गए। जब उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बहादुर इंसान अपने हवास पे काबू नहीं रख और तलवार लेके फिरना शुरू किया कि जिसने ये लफ्ज कहा उसकी गर्दन उड़ा, ये वो दिन था। 23 साल दावे के बाद हजरत खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं सहाबा के साथ रहे, और कोई एक झूठी रिवायत भी नहीं दिखा सकता कि उन्होंने कभी 12 रबीउल अव्वल मनाया, झूठी रिवायत भी नहीं दिखा कि मिलाद मुस्तफा उन्होंने मनाया। अब इनको सहाबा से तो बहुत मोहब्बत बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई इनकी, लेकिन दिलचस्प चीज ये है कि मिलाद मुस्तफा इजाद बरेलवियों की है यहां पे पाकिस्तान में, और गौस पाक के मानने वाले हैं, इनको गौस पाक कहते थे, अब्दुल कादिर जिलानी ने। और दिलचस्प चीज ये है कि सैयद जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनकी किताब है गुनियतुत तालिबीन, उसमें उन्होंने 10 मुहर्रम लिखा है रसूल सस्म की योम योम पैदाइश, और फरमाया कि अशूरा के दिन पैदा हुए आप सब। इनसे कहें कि जिनको कम से कम बाकी तारीखों को नहीं मानते तो गौस पाक की बात भी मान लो, वो भी कहते हैं अशूरा के दिन पैदा हुए। 12 रबीउल अव्वल को वफात हुई थी। अब इस बारे में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल को वफात है, कोई डिस्प्यूट मौजूद ही नहीं है तारीख में। आप ससम की पैदाइश थी, ये बहसें हैं उसमें, कोई अशूरा में कहते हैं, कुछ ने और बात महीने लिखे, क्योंकि कहीं पे लिखी हुई पैदाइश मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ अंदाजे हैं, क्यास हैं, मुख्तलिफ तारीखें हैं, उनमें अक्सर ने 12 रबीउल अव्वल से इत्तेफाक किया है। अब उनका इत्तेफाक कह सकते हैं कि बाज़ उलमा का इत्तेफाक है कि 12 रबीउल अव्वल ही यौम पैदाइश थी, लेकिन कन्फर्म नहीं पता। लेकिन जो सबसे ज्यादा मिला मनाने वाले हैं, उनके जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनको गौस पाक वो कहते हैं, उन्होंने तो 12 रबीउल अव्वल कहा ही नहीं है। उन्होंने तो अपनी तारीख बुनियादुल तालबीन जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि अशूरा के दिन पैदा हुए थे आप सब। तो जिस दिन कन्फर्म आप ससम पर की यौम वफात है, जिस दिन कन्फर्म है कि आलम इस्लाम पर मुसलमानों पर ऐसा दौर था कि शायद इससे ज़्यादा गम का दौर सहाबा ने देखा ही नहीं था, वो दिन झंडियाँ लगा के बतियाँ बजा के ढोल और बाजे के साथ गुजारना, ये खैर उन्हीं को जेब देता है। नवाफिल तो समझ आते हैं, सदके भी समझ आते हैं, और अगर आप तो मैं तो मेरे आप तो मेरे उम्र के करीब करीब हैं, तो हम वो दौर देख चुके हैं जब ये 12 वफात कहाँ करते थे। उस वक्त मिलाद का नाम ही नहीं होता था, चंदा भी मांगते थे तो कहते थे 12 वफात था, पैदाइश नहीं कहते थे। और मुझसे बहुत ज्यादा बढ़कर तो ये बैठे हैं हाफिज अली असगर साहब,
जो गरीब बहन के अभी में हमारे इलाके में कोई आदमी है, वो जब भी जैसे रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है बहन से उसकी जो बहन बैठता है।
हाँ जी बिल्कुल। तो
हाँ, तो सीधा सीधा सवाल तो यही आता है कि इस्लाम में एक बिजनेस इसको आप बिदत कहते हैं?
नहीं, ये बिदत नहीं, बिदत दीन में होती है। आप एक तो चीज़ ये है कि आप दीन में ये यौम पैदाइश तो किसी शख्स आप ससम के उसमें से कभी यौम पैदाइश किसी का भी साबित नहीं है कि आप ससम ने किसी का भी यौम पैदाइश कभी मनाया। हजरत फातिमा तो ज़ोरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई थी, उनके लिए कम खुशी की बात नहीं थी, लेकिन कभी उनका यौम पैदाइश नहीं मनाया उन्होंने।
तो
है ही नहीं, बर्थडे तो ये अंग्रेज़ों की ईजाद है, हाँ मतलब हमारा तो ये मामला ही नहीं है, दीन जब आप इसको दीन में रंग दे देते हैं तो फिर बिदत ही है। और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यानी दीन तो कामिल है, अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत के साथ ये कामिल दीन है, क्यामत तक के लिए बस यही कुरान और यही सुन्नत है क्यामत तक के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें कोई राय भी दाखिल करेगा तो बिदत होगी, कुल्लो बिदत जलालत, हर बिदत गुमराही होगी, कुल्लो जलालत। मुख्तलिफ तारीखें हैं, ये ईरानी तारीख मिलती है इसके बारे में, और वहाँ पे मतलब जो थे जिनके बारे में ये नाम में आता था जो वहाँ से शुरू हुआ था, वो नहायत नाहल किस्म के हुक्मरान थे, लेकिन चीज हमें इन तारीखों में पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। आपने पूछा कहाँ से शुरू हुआ था,
ये तो छोटा
नहीं, वो तो अभी आप देखें मतलब वो तो कितने योम पैदाइश मनाते हैं जो एल एस सी है, देखिए उसवा हमें ना तो दो किताबें दी गई ना दो उसवे बताए, एक किताब और एक उसवा, क्यामत तक यही किताब और यही उसवा जो कामिल है हर लिहाज। हमें अगर पता है तो हमारा ईमान बढ़ता है, अगर हमने उसको नहीं देखा तो फिर कान वाला मामला है, कान में तो कोई बड़ी चीजें हैं, सारी तारीख कान ही होती है, किसी ने कुछ लिख दिया, और तारीखें तो लिखवाई गई हैं पहले, कर्बला भी एक लिखवाई हुई तारीख है, तारीख के हालात तो बहुत बुरे हैं। कोई और सवाल करना चाहते तो कर सकते हैं, और अभी इस बात दुआ में ये है कि जब भी हम दुआ करते हैं जो तरीक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन दुआओं को पसंद फरमाया था, सबसे मुकद्दम तो वही दुआएं हैं, उसमें एक सूरह फातिहा है, जब हम इसकी तफसील समझते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कितनी गहरी और कितनी अजीम शान दुआ है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी आसानी से चार लफ्ज़ों में सिखाया। फिर एक हमारी उम्मत के लिए है, उम्मत मुसलमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो दुरूद शरीफ है, जब भी हम कहते हैं कि हम दुआ कर लेते हैं तो दुआ में यही दो मुकद्दम दुआएं हैं जो हम आप इज्तमाही तौर पर भी कर लेते हैं, जो अल्लाह ने हमें खुद सिखाई, जो अल्लाह के पाक ने भी हमने बार बार सिखाया फरमाया, और एक दुआ जो मोमिनों के लिए बहुत जगह लिखी गई और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी आखिरी दुआ के तौर पर वही तारीख में आती है, तबरना मुस्लिमीन वल आखिरीन इंसान है, अल्लाह हमें मुसलमान होने की हालत में उफा, वो मुसलमान जो अल्लाह के नज़दीक मुसलमान है, क्योंकि वही नफे में है, बाकी तो कोई नफे नहीं, तो यही दुआ है, उसमें सारी दुआएं आ जाती हैं, खुदा तआला ऐसे असबाब पैदा करते हैं कि हम उसके नज़दीक वो मुसलमान होते हैं जो उसके मुसलमान होते हैं, जो अल्लाह उसके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होते हैं, यही दुआ हम कर लेते हैं सूरह फातिहा दुरूद शरीफ और यही वाली दुआ कि अल्लाह तआला हमें सबको, क्योंकि अल्लाह अलीम है वो हमें जानता है, हमारे पास ये मोहलत थोड़ी सी जिंदगी में, अल्लाह तआला फरमाता है माता तेरी नफ्स माला तक से बोला, नहीं कल तक की भी मोहलत है ये नहीं किसी के, माता तेरी नफ्स में आई है दिन तमूत, ना किसी को ये पता है कि कब और कहाँ अल्लाह ने उसके लिए मौत लिख दी, इन अल्लाह अलीम हकीम, इसका इलम और खबर सिर्फ अल्लाह के पास, तो हमारे लिए तो यही है कि हम दुआ करें कोशिश करें। अल्लाह तआला ने जो कुरान करीम में इरशाद फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो दुआ करेंगे कोशिश करेंगे हमारे रास्ते के लिए तो मैं उनके लिए रास्ते खुद बनाऊंगा, तो हम सब ये चाहेंगे कि हमारे लिए अल्लाह रास्ते बना दे और उस रास्ते पर हमारा अंजाम करे जो अल्लाह अपने बंदों के लिए पसंद करवाते हैं। آمین
آمین.
جزاک اللہ خیر.